मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 23 सितंबर 2019 के एफईआईएस के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय के बारे में आपको बताऊं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। आपको जानकारी है कि हमारे जो मेन एग्जामिनेशन है 2019 के, वो शुरू हो चुके हैं। जनरल स्टडीज तक का जो हिस्सा है वह हो चुका है और अब जो कमिंग दो सैटरडे संडे होंगे उनमें ऑप्शनल पेपर भी कंप्लीट हो जाएंगे। यहां मैं आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, यूं कह लीजिए कि सलाह देने जा रहा हूं कि अभी जो एग्जाम हुए हैं मेंस के, आपके पास बकायदे वे अनसॉल्व्ड पेपर होने चाहिए और उन अनसॉल्व्ड पेपर को आप अपने पास रखें और ध्यान से पढ़ें भी। एक बात मैं जो अपनी तरफ से आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कि जब सैटरडे संडे को एग्जामिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पूरे हो जाएंगे, उनकी परीक्षाएं हो जाएंगी, तो नेक्स्ट मंडे से मैं ये जो मेन एग्जामिनेशन हुए हैं इनकी समीक्षा आपके साथ करूंगा और बहुत ही विस्तार के साथ करूंगा। और खासकर ये मेन एग्जामिनेशन क्यों आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। मैं एक एक पेपर को लेकर के आपसे इसकी चर्चा करूंगा। तो अभी आपको जो अपने लेवल पर तैयारी करनी है वह कुल मिलाकर यह कि आप सबके पास अपने अपने अनसॉल्व्ड पेपर्स जो अभी जो हुए हैं उनकी प्रतियां होनी चाहिए और आप उन्हें बकायदे पढ़ें भी, कई कई बार पढ़ें ताकि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं थोड़े से आपके दिमाग में रच बस जाएं, याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात और, मान लीजिए कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, आप 2025 का प्लान कर रहे हैं, तब भी आप मत समझिएगा कि अभी तो एग्जामिनेशन में बहुत वर्ष बाकी हैं तो क्यों मैं अभी मुख्य परीक्षा के बारे में सोचूं। नॉट एट ऑल दोस्तों, अगर आप मुझ पर जरा भी विश्वास करते हैं तो विश्वास कीजिए कि अभी से ही आपको इस पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इस मायने में आप सचमुच में भाग्यशाली हैं कि आप इतनी जल्दी इसके बारे में सोच रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे कॉरपोरेट टैक्स के बारे में कुछ बातें करूंगा, विस्तार के साथ बातें करूंगा। लेकिन पहले एक दूसरी आईए घटना को देख लेते हैं, और यह घटना कौन सी होगी मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अनुमान लगा लिया होगा। यह घटना है हाउडी मोदी। यह हाउडी क्या है, है ना, कुछ नया सा शब्द है, अभी तक हम लोगों ने इसको इसके बारे में नहीं सुना था। ये बेसिकली हाउडी जो है, ये जो टेक्सास है वहां के लोग हैं वो आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो या तो अभिवादन के रूप में इसे कहते हैं, और इसको अगर आप विस्तार दे दें तो ये शॉर्ट फॉर्म है हाउ डू यू डू, इसका शॉर्ट फॉर्म है हाउडी, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का मतलब एक तरह से अभिवादन भी होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन है वो है आप कैसे हैं, यानी कि वहां के जो हमारे भारतीय हैं उन्होंने, देखिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अरेंज भी किया था ह्यूस्टन में, वहां के जो भारतीय हैं वो मोदी जी से कह रहे हैं कि सर आप कैसे हैं। तो बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने ये ढूंढा, हाउडी मोदी। मित्रों, अखबारों में इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है, टेलीविजन पर तो कल, दूरदर्शन मतलब पर तो इसका बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट ही हुआ था। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा हो और कुछ लोगों ने न भी देखा हो, क्योंकि उसी के पैरेलल थोड़ा सा आगे पीछे भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच भी चल रहा था। खैर, मुझे देखने का मौका मिला, बहुत ही जीवंत और बहुत ही ऊर्जावान ये प्रोग्राम रहा है। लेकिन यहां मैं इसको लेकर के आपसे केवल दो तीन बातें ही शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो देखिए कि ये जो ह्यूस्टन है इसे बेसिकली कैपिटल ऑफ एनर्जी कहा जाता है, एनर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो भी आप कह लीजिए, यानी कि ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र। और आपको मालूम है कि भारत को अभी ऊर्जा की कितनी अधिक जरूरत है, या बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक बहुत बड़ी बात इसमें यह हुई है कि अब ये देखिए कि कोई ऑफिशियल प्रोग्राम उस तरीके से नहीं था, ये वहां हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उन लोगों ने अरेंज किया था। और बड़ी बात यह है कि इस मंच पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी आए और उन्होंने बकायदे मोदी जी को, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी को, अपना दोस्त कहा। दोस्त कहना एक सामान्य संबोधन नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे डिप्लोमेसी की बात है। दोस्त कहने का मतलब है बहुत ही निकटता का संबंध, यानी कि ठीक है वो राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो एक राजनयिक संबंध तो हो गए, लेकिन नहीं, उससे भी बढ़कर कहीं निजी संबंध और जहां संबंध निजी स्तर पर आ जाते हैं, आप ये मान करके चलिए कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिन समस्याओं का आप समाधान ढूंढना चाहते हैं, उन्हें ढूंढना बहुत सरल हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि भारत में हमारे जो भारतीय हैं जो विदेशों में रह रहे हैं और खासकर अमेरिका जैसे देशों में, वो जो प्रवासी भारतीय, वो कितनी ताकत रखते हैं कि आप कल्पना करके देखिए कि ट्रंप जी को भी मोदी के साथ आना पड़ा। ये वहां रहने वाले हमारे प्रवासी भारतीयों की राजनीतिक शक्ति को दिखाता है। और शायद आपको जानकारी हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, तो आपको यहां लोकतंत्र नहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो लोक की शक्ति है वो किस वहां हमारे राजनेताओं को उनके अनुकूल काम करने के लिए मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा, लेकिन एक बात की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, मेन एग्जामिनेशन में जो जनरल स्टडीज हैं और निबंध पर ऑलरेडी हो चुके हैं। मित्रों, इस बार जो जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी आता है, देखो उसमें एक प्रश्न पूछा गया है, राइट? वो प्रश्न है, मैं प्रश्न आपको पढ़ के सुना रहा हूं। भारत और जापान के लिए समय आ गया है कि एक ऐसे मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टित करते हुए एशिया एवं संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा। टिप्पणी कीजिए, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। द टाइम हैज कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड ए स्ट्रांग कंटेम्पररी रिलेशनशिप ऑन इन्वॉल्विंग ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट विल हैव ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एशिया एंड द वर्ल्ड एज ए होल। कमेंट 10 नंबर का है और 150 शब्दों में लिखना है। देखिए, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बहुत जबरदस्त संधि हुई थी, उसकी चर्चा मैंने डेली ऑडियो लेक्चर में की थी। ये वहां से ही उठाया हुआ प्रश्न है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी बुनावट है, जिसका बना बुनाया उत्तर आपको नहीं मिलेगा, अपनी तरफ से आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन खासकर मैंने इसकी चर्चा इसलिए की है कि इसमें जो जापान शब्द है, इसकी जगह पर कह दीजिए भारत और अमेरिका के लिए समय आ गया है कि, क्या ये संभव नहीं है? ये संभव है। तो आप कह सकते हैं कि अभी जो भारत और अमेरिका के बीच बातचीत होगी, वह आपके लिए नेक्स्ट ईयर को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है कॉरपोरेट टैक्स। मैंने क्यों इस विषय को चुना है, यह भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में बहुत जबरदस्त कमी की है, और इतनी कमी जो आज तक नहीं की गई, और इस कमी को का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर पड़ा, और पूरी के पूरे हमारा जो आर्थिक जगत था वो भौचक्का रह गया कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, कॉरपोरेट टैक्स में इतनी कमी। अब मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपसे बातें करूंगा। दोस्तों, चूंकि अब मेन एग्जामिनेशन इस साल के हो चुके हैं, और इस साल के पेपर में क्या तब्दीलियां आई हैं, करेक्टर किस तरीके से बदला है, भविष्य में क्या संभावनाएं बन रही, उसको लेकर के तो हम लोग नेक्स्ट वीक से लंबी बातचीत करेंगे, डेफिनेटली एक लंबी बातचीत करेंगे। लेकिन स्वाभाविक है कि उन प्रश्नों को देखते हुए मुझे भी अपने डेली ऑडियो लेक्चर के जो तौर तरीके हैं, जो कंटेंट है, उसमें परिवर्तन करना चाहिए, ताकि हम भी कंटेम्प्रेरी हो सकें और इस तरीके से बातचीत कर सकें जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो। तो देखिए, जब हम कॉरपोरेट टैक्स को लेते हैं, तो कॉरपोरेट टैक्स के 2-3 पक्ष हैं जो आपको अखबारों में भी पढ़ने को मिल रहे होंगे। पहला तो यह है, इसका स्थायी पक्ष क्या है, एज ए सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कॉरपोरेट क्या होते हैं, कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है, हमारे यहां अभी कितना कॉरपोरेट टैक्स था, उस कॉरपोरेट टैक्स का क्या इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा था, और इसमें क्या कुछ सुधार की मांग की जा रही थी और क्यों की जा रही थी। ये इसका एक पक्ष है जो कॉरपोरेट टैक्स का बेसिक है, जिसे मैं अक्सर बेसिक नॉलेज कहा करता हूं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके सिलेबस में सीधे सीधे ये मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं हुआ कि आप के सिलेबस में ये है ही नहीं। आपका सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और अगर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से है तो सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स का ये बेसिक हुआ। इसका जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष ये है कि सरकार ने अभी कॉरपोरेट टैक्स घटाने की घोषणा की, तो अब आप देखिए कि उनमें जो घोषणा की गई है उसमें अलग अलग तरीके के हैं कि ये कॉरपोरेट टैक्स होंगे वो इतना परसेंट अब देंगे, अगर वो फायदा ले रहे होंगे तो उन्हें इतना देना पड़ेगा, फायदा नहीं ले रहे होंगे तो इतना देना पड़ेगा, जो 2019 अक्टूबर के बाद जो कॉरपोरेट बनेंगे जो कंपनी बनेंगे उन्हें इससे भी कम इतना देना पड़ेगा, तो यानी कि इस तरीके के उसमें कंटेंट दिए हुए हैं, तथ्य दिए हुए हैं। स्टूडेंट से गलती कहां होती है, यहां दो गलतियां होती हैं। पहला तो यह है कि वो कॉरपोरेट टैक्स जो फर्स्ट पार्ट है उसको रट लेता है, याद कर लेता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कॉरपोरेट, तो क्या आपको मालूम है कि कॉरपोरेट किसको कहा जाता है? जैसे मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा मेरी एक दुकान है और होलसेल की दुकान है और मैं प्लास्टिक का होलसेल का बिजनेस करता हूं और मेरी डेली जो बिक्री है वो 5 लाख रुपए की है, डेली बिक्री मेरी 5 लाख रुपए की है, मतलब मैं हर महीने 1.5 करोड़ रुपए, साल भर में मैं 15 करोड़ रुपए का, 18-20 करोड़ रुपए का व्यापार करता हूं, है ना, मैं अपनी दुकान का मालिक हूं, तो क्या ये कॉरपोरेट है? आपको सोचना पड़ेगा। या कह लीजिए कि हम 3-4 लोग मिल गए हैं और बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ की जगह पर हम 150 करोड़ का, 200 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं और हमारी वही प्लास्टिक की दुकान है, बहुत बड़ा गोडाउन है, हम लगातार रात दिन बिजी हैं उसमें, 50-100 लोग काम कर रहे हैं, क्या ये कॉरपोरेट है? समझना पड़ेगा, तभी आप कॉरपोरेट को समझ पाए। तो फिर कॉरपोरेट क्या है इसे आपको समझना होगा, क्योंकि जब तक इसे नहीं समझेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। फिर आप चलिए देखिए, अब कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट में मान लीजिए कि 3 लोग हैं, 3 लोग उसके उस शेयर होल्डर्स हैं, 3 लोग, अब ये 3 लोग मालिक भी हैं, राइट, और उसके शेयर होल्डर भी हैं। अब ये तीनों लोग आप देखिए कि कैसे टैक्स दे रहे हैं, एक तो उनकी कंपनी को टोटल फायदा हो रहा है साल भर में और एक इनको पर्सनली भी फायदा हो रहा है, तो ये पर्सनली फायदा और जो कॉरपोरेट का फायदा है ये कहां एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेगा, इसको भी आपको समझना होगा, आपके दिमाग में चीज क्लियर होनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है कि ये जो 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर के इस कॉरपोरेट को बनाया है, अगर ये वहां सैलरी ले रहे हैं अपनी कंपनी से तो स्वाभाविक है कि इनकी ये पर्सनल इनकम हो गई, तो ये पर्सनल इनकम पर ये इनकम टैक्स देंगे, और ये जितनी सैलरी ले रहे हैं तो कॉरपोरेट जो पूरा कमा रहा है उसमें से वो सैलरी निकल गई ना, तो ये बेसिक बट नेचुरल है कि ये अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स देंगे क्योंकि ये इनकी पर्सनल इनकम है, और इनकी सैलरी वगैरह सब देने के बाद जो कंपनी को फायदा होगा, जो कॉरपोरेट को फायदा होगा, उस पर इन आप टैक्स दे रहे हैं। तो आप यूं कह लीजिए मोटे तौर पर कि जो कॉरपोरेट टैक्स है वो बेसिकली कॉरपोरेट का पर लगाया गया इनकम टैक्स है मोटे तौर पर। क्या आप इन सब बातों को समझते हैं? जब आप इसके बेसिक को पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो आपको समझना ही होगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब मैं आता हूं तथ्य पर कि अब ये तथ्य दिए हुए हैं, इतना होगा तो इतना देना पड़ेगा, ऐसा होगा तो ऐसा देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या आपको इन्हें याद करना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है? दोस्तों अभी जो एग्जाम हुए हैं, कल ही एग्जाम हुआ है, 3rd पेपर में जो एक क्वेश्चन पूछा गया है मेंस का, उस वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की स्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रा स्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए, 150 शब्द। डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टडी GDP ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गुमेंट्स। 150 वर्ड्स, 10 नंबर का है। इसको हम बकायदे जो कॉरपोरेट टैक्स पर बात कर रहे हैं, इस मॉडल को, क्वेश्चन पूछने के इस तरीके को इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कॉरपोरेट टैक्स के क्या स्लैब बना दिए गए हैं, किन किन कॉरपोरेट को कितने कितना देना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि भारत धीमी होती हुई आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए या गति को तेज करने के लिए सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी करने का निर्णय लिया है। आप क्या समझते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा या गति तेज हो जाएगी? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि तेज हो जाएगी तो क्यों होगी, और अगर लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। आपको इस पैटर्न को दिमाग में रख करके और फिर अखबारों से उस तरह की चीजें निकालनी पड़ेंगी जो इसके आंसर में आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों इस पैटर्न पर आपको भविष्य के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मित्रों मैं इस पर अभी आप सबसे बात नहीं कर सका हूं, अगर कल कोई बहुत महत्वपूर्ण इवेंट सामने नहीं आया तो डेफिनेटली मैं इस विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। और दोस्तों, मैं अपने दो मित्रों का विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगा जिन्होंने एकेडमी की 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस में एडमिशन लिया है। ये हमारे दो दोस्त हैं, लक्ष्य गौतम, आपका गांव है गढ़ी नवाबाद जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, और आलोक सिंह, आप बांदा उत्तर प्रदेश से हैं। तो दोस्तों, आखिरी में ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं, राजेश कुमार राजस्थान से, रोहितास गुर्जर, सगुना श्रीमाली अहमदाबाद से, उत्तम कुमार दुबई से, सतीश सांखला, दीपक विश्वास रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, विनीत शुक्ला बस्ती से, उर्मिला देवांगन छत्तीसगढ़ से, अनूप राज, फयाज खान शाहबाद उत्तर प्रदेश से, विश्वजीत मोंडल, सवितुर गंगवार, प्रिया सक्सेना और सत्या पांडे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।